खाना जब भी खाए हमेशा प्रभु को अर्पण कर देना चाहिए, और ख्याली तौर पर जिन लोगों ने गुरु धारण किया है वो अपने गुरु को अर्पण कर ले, और ये सोच ले प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इसमें हमारे गुरुदेव का प्रकाश है, उसके खाने से हमारे अच्छे विचार बने। जिन लोगों ने जानवर पाले होंगे वो भी देखते होंगे जो शख्स उसे खाना ले कर जाता है वो उसके हाथ चूमने लगते हैं। और देने के बाद वो खाता है, उसमें से फिर आप ही ने दिया, अगर आप लेंगे तो वो मारो भी देता। तो खाते तो हम ही आप हैं, ईश्वर को तो कुछ देते नहीं है, बस खाली उसको ख्याली तौर पर अर्पण करना। मुश्किल से 10% लोग ऐसा काम करते, मुश्किल से, बाद बाकी खाना आया नहीं तो उस जानवर से भी गए गुजरे होते हैं, जानवर भी कम से कम जो उसे देता है उसके हाथ एक प्रकार उस गर्दन भी हिलाता है। हमने स्वयं भी देखा है, हमारे बाबा के 5 जानवर थे, रखते तो वो 100 से ज्यादा थे, लेकिन एक घोड़ा जिसको, एक गाय, 2 बैल, 1 भैंस, तो जो रोटी उन्हें भेज दी जाती थी उन्हीं के वो 5 टुकड़े करके खिला देते थे। जब उनकी डेथ हुई तो उनकी डेड बॉडी के पास उन दोनों बैलों ने किसी को आने ही नहीं दिया। तो कोई गांव के बुजुर्गवार थे, उनने कहा कि साहब इनकी इच्छा ये है कि इनकी डेड बॉडी इन्हीं के उस पर जाए, लिहाजा वो जो गांव में लड़ू होता है वो जोता गया उसी पर उनकी डेड बॉडी। अब बाबू जी बता रहे थे एक मील पर हम मिले तो बेटे जैसे वो वाकई में दुखी थे, और 7 दिन के अंदर उनके वो 5 जानवर मर गए बगैर किसी बीमारी। तो अक्सर बाबू जी हम लोगों से कहते थे बेटे हम लोगों से तो अच्छे ये जानवर हैं जो अपने मालिक की याद में 7 दिन के अंदर मर गए, अगर प्रेम करना है तो ऐसा करना चाहिए। खाना हमेशा चाहे 2 मिनट 5 मिनट जो भी हो आँख बंद करके ईश्वर को जरूर अर्पण कर देना चाहिए। प्रार्थना उसमें लिखी है प्रभु ये आपका दिया हुआ खाना है, इसके खाने से हमारे अच्छे विचार बने और आपका प्रेम हमें हमेशा मिलता रहे। इसमें दोनों फायदे हैं, एक तो हमारा मन की आदत पड़ जाती है सरेंडर करने की, और जब हम प्रभु के ख्याल में खाते हैं तब हमारे विचार अच्छे बनते हैं, हमारा मन शुद्ध रहता है। आपने देखा बहुत से पुराने बुजुर्ग हैं खाते वक्त नहीं बोलते हैं, बात ही उनका वही अपने ईश्वर के ख्याल में न रहते। दुनियादार है वो वहाँ भी नहीं छोड़ते, दुनिया ही की बातें करते रहते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनाते चले जाइए तो ये सब आपको ईश्वर के पहुँचाने पास पहुँचाने में सहायक। फिर नियम बना लीजिए, नियम का सबसे बड़ा ये होता है तो वो हमें याद दिलाता रहता, वो हमें याद दिलाता रहता है। बात बाकी जिस चैप्टर को स्टूडेंट, जिसकी तैयारी अच्छी होती है, वो इम्तिहान से घबराता नहीं। जिसकी तैयारी नहीं होती है वो इम्तिहान से घबराता। हमारे गुरुदेव कहते थे, बेटे इम्तिहान तो देना ही है, पर घबराना क्या, तैयार हो। अक्सर कहते थे, भाई देखो मेडिकल में बेटे थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल होता है, वायवा भी होता है जो अचानक होता है। टीचर आया, उसने कहा, तो जब तुम हर वक्त तैयार रहोगे तब फिर तुम्हें काहे की घबराहट। उन्होंने कहा, हर वक्त प्रभु के इम्तिहान के लिए तैयार रहो, हर वक्त मौत के लिए तैयार रहो, जिस वक्त भी आए उसे गले लगे। और इन दोनों की तैयारी हर एक को करनी चाहिए, नहीं तो वक्त आखिर में परेशानी होती है। प्रैक्टिकल देखना है, दुनियादार आपके जो रिश्तेदार हैं उनके वक्त आखिर पर देखिए, और आप बता सकते हैं कि इनके ख्याल कहाँ कहाँ उलझे हुए थे या कैसे। यही छोटी छोटी चीजें हमको इस भवसागर से पार कर देती, और जो हर व्यक्ति को पर ईश्वर सबको पार कर सकता है, वो सर्वशक्तिमान है। गुरु जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो 5-10 को पार कर सकता। जब हम किसी से सबॉर्डिनेट को पावर देते हैं तो उसको लिमिटेशन होती है कि तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। ऐसे ही ईश्वर ने जो पावर दी है वो भी लिमिटेड दी है, अनलिमिटेड नहीं दी है। लेकिन बेड़ा उसी का पार होता है जो कि अनेकों से एक कहा जाता है। पहले सब ख्यालों को हटाते चले जाइए, एक ख्याल पा जाइए। तुलसीदास जी उन्हीं में से थे, और राम भगवान के युग में नहीं पैदा हुए, लेकिन उन्होंने भगवान राम की सब कहानी लिखी। उस पर मथुरा की बड़ी चर्चा हुई, सब पंडितों ने बहुतेरा मारा। उन्होंने कहा, क्या कहूं छवि आपकी भले बने ओ नाथ, तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष। उनके स्टीव होते और वहीं पे तो हर व्यक्ति को, हर अभ्यासी को सब ख्याल से हटा के एक पाना। और इसी को हमारे यहाँ लाला जी महाराज साहब कहते थे, दुनिया में रह के दुनिया के सब काम सुचारू रूप से करते हुए, किसी वक्त भी अपने गुरु की ख्याल से काफी। यही सबसे बड़ी भूमिका। हम और आप सुचारू रूप से नहीं करेंगे, बच्चे ही कहते थे, हमारे पिताजी ने ये गड़बड़ी की, ये गड़बड़ी की, उन्हें मकान बनाना चाहिए। उससे को आप पर चार्ज लगाते हैं, वही जिन्हें हम कहते हैं ये हमारे बच्चे। एक साहब बाबूजी से कह रहे थे, उनके बेटे तुमने अपने पिताजी में बुराई के अलावा कभी कोई अच्छाई भी देखी कि नहीं। उनके क्योंकि तुम बुराई का चश्मा पहन चुके थे, इसलिए उनकी अच्छाई तुम्हें नहीं कोई दिखाई। हमारा उनका संपर्क बहुत थोड़ा रहा, تب بھی ہم تمہیں بتا رہے ہیں ان میں یہ بھی ایک اچھائی تھی، اور وہ کوئی وہ نہیں تھے، وہ ان کے خود کے بھائی تھے۔ وقت آخر میں آپ نے باؤ جی سے کہا، بھیا کچھ روپے لائے ہو ہمیں دے دو۔ تو اکثر مانگتے رہتے تھے، باؤ جی نہیں عادت سے واقف تھے، انہوں نے نہیں، بھیا ہم پر ٹکٹی بھر کو پیسے ہیں، اور لینے کے بعد واپس نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، نہیں بھیا یہ بات نہیں ہے، اب ہمارا وقت آخر ہے اور ہمارا سب پیسہ بے ایمانی کا ہے، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں آپ کی شدھ کمائی سے کم سے کم کفن توڑ لیں۔ باؤ جی نے فوراً انہوں نے پیسے بھی دیے اور پرارتھنا کی، صاحب جیسے بھی ہوں یہ ہمارے بھائی۔ ان نے اس چیز کو لکھا بھی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کے جنازے پہ ایک طرف لالا جی مہاراج صاحب ہیں، ایک طرف مولوی صاحب، ایک پہ کوئی عورت آ رہی بار بار، اس کا پیسہ گرمی رکھے ہوئے تھے، وہ زیور گرمی رکھے ہوئے تھے۔ تو جس کا خیال کی دھار جائے گی اتنی مضبوط ہوتی ہے، آپ کو نیچے لا کے پٹک دیں گے۔ پھر انہوں نے ان کے لڑکے کو بلایا، انہوں نے کہا، بیٹے یہ دیکھو کہاں کس کا کو پیسہ ہے، اس کو دان کر دو۔ اسے جب لڑکوں نے کہا تو انہوں نے یہ جواب دیا، بیٹے تم برائی کا چشمہ پہنے تھے، ہمارے بھی وہ بھائی تھے، لیکن ہم نے ہمیشہ ان سے دور رہے، لیکن ان کی برائی دیکھنے کی کوئی کوشش دور اس لیے رہے کہ یہ کمیاں برائیاں ہم میں نہ آ جائیں، اور تم ان کے نزدیک رہے اور سوا برائی کو چھوڑ کے اور تم۔ اور انفارچونیٹلی ان کا لڑکا کوئی، بلکہ وہ کیا ان کے لڑکے بھی، کوئی بھی آج تک خوش نہیں، جبکہ کوئی کہتا تھا صاحب ان پہ اتنا سونا ہے، ایشور جانے کہاں گیا کیا ہوا۔ تو ہمیشہ یہ دیکھیے کہ ہم دوسرے کا کیا بھلا کر سکتے ہیں، بھلا نہیں کر سکتے تو پرارتھنا ہی کر دیجیے صاحب، اس میں کچھ نہیں جاتا آپ کا، لیکن اس کے دکھ کے باعث مت بنے کہ اس کے دکھ کو اور بڑھاتے چلے جائیں، ان کو دکھ پہ اور اسی لیے انہیں ہر طرف سے خیال کی دھار ہٹا کے کیول اپنے گرو کی طرف آ جائے، اسی کو، اور آپ اپنا اسسمنٹ خود ہی کر سکتے ہیں کسی کو، لیکن دو وقت کی پوجا سے ڈیفینیٹلی نہیں آئے گی، ہم لکھ کے دے سکتے ہیں، ہاں جب ہر وقت خیال کرتے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی آ جائے گی، دنیا بھی حاوی ہوگی تو وہ بھی ہٹ جائے گی وقت آخر میں۔ اور کرنا تو اتنا ہی ہے کہ سب چل رہے ہیں تو یہ خیال کر لیا ہم نہیں، ہمارے گردے چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں تو یہ سوچ لیا، دنیا کے کوئی کام کر رہے ہیں تو جب اسی خیال کو برابر بلاتے رہیں گے تو وقت آخر میں آپ کے اردے آپ کے ساتھ نہیں بلائیں گے۔ شکلا جی کی بہن ہے، منگلور میں ہے، شاید ہی کوئی بھنڈارا اٹینڈ کر پائی ہوں، لیکن وہ ہر وقت خیال رہتی، اور ہر مہینے میں ان کا ایک فون آ جاتا ہے کہ آج دیکھا تھا بھیا جی آپ آئے ہیں، یہاں بیٹھے کیا آئیے، بنگلور ہم تو گئے نہیں، لیکن یہ خیال کی شکتی اتنی ہوتی ہے اس سے۔ ابھیاسی کو اسی لیے کیول ایک کہ ہر وقت اپنے خیال کی دھار کو، یہی ہمارے گردیو نے لکھا تھا کہ ان دنیا والوں نے، دنیا والوں سے ان کا بننا تھا انہیں کے رشتے دار، उन बेईमान सत्संगी, उन्होंने वर्ड लिखा था बेईमान सत्संगी, उन्होंने मुझे कहीं का ना रखा होता अगर लाला जी महाराज साहब मेरे साथ। मैं लाला जी महाराज साहब के ख्याल को कभी नहीं भूला और न कभी बेअतकाद। तो इसी तरह जब हमारे ख्याल की धार जो इधर उधर भटक रही, उसे जो सब दुनिया काम करी, उनने भी सब किए थे, हम लोगों से बाबूजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन ये मत, उन्होंने नहीं कहा कि ये मत करो वो मत करो, जिसको मने करेंगे तो मन और करता है उसे करने के लिए। और इसीलिए उन्होंने लिखा है रामायण में, प्रवेश नगर की जो सब कहा जा, हृदय राख कौशल पर जा, जब तक आपका आपका गुरु है और ईश्वर आपके साथ है, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जिस वक्त उससे गाफिल होंगे, कौन था उनको मार नहीं पा रहे थे, उन्होंने कहा ना उसकी बीवी हर वक्त उसके ख्याल में है, और जो ईश्वर के हम उसका कुछ बाल बांका नहीं कर सकते। और ये काम खाली सभी आदमी भी कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, न कर